श्री कृष्णा मङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः वार्धक्ये चेन्द्रियाणां विगतगतिमति स्याधिदैवादितापै पापैरोगैर्वियोगै त्वनवशितवपु पौढिहीनं च दीनं मिथ्यामोहाभिलाषै भ्रमति मम मनो दुर्जटे ध्यानशून्यम् क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो नो शक्यं स्मार्तकर्म प्रतिपदगहन प्रत्यवायाकुलाख्यम् श्रोत्रे वार्ता कथं मे द्विजकुलविहिते ब्रह्म मार्गे सुसा नास्था धर्म विचार श्रवण मननयो किं निधिध्यासितव्यम् क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। शिव भगवत भक्त जन जीवन के मूल जो अंग है और वार्धक्य तक पहुंचने के बाद मनुष्य की जो स्थिति है उस स्थिति की वर्णन भगवत पाद आचार्य शंकर कर रहे हैं। इस श्लोक में मुख्यतया शरीर और मन और मनजन्य ताप वार्धक्य चांद्रियाणाम च इंद्रियाणाम विगत गति इंद्रियों के परवश होकर के जिनका जीवन होता है इंद्रियाधीन वो व्यक्ति तो पराधीन है ही वार्धक्य उपनीत होते होते सहज रूप से वो और इंद्रियों के अधीन हो जाता परंतु सामर्थ्य अभाव आचार्य शंकर निर्देश करते हैं विगत गति उसके बाद कहते हैं मति मन इसे देहरूपी कलश में ऐसा एक तत्व परमात्मा ने दिया है नारायण जिसके द्वारा आप इस संसार पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। विजय का अर्थ मैं उस परब्रह्म परमात्मा के पास तक पहुंच सकते हैं और इसी मन से आप सबसे निकृष्ट भी बन सकते हैं। मति इसीलिए प्रारंभ से ही अगर मति के ऊपर ध्यान न दे तो नारायण वार्धक्य में वो मति और हमारे जीवन को दुखद बना सकता है। इसीलिए भगवत पाद आचार्य एक दृष्टि दे रहे हैं कि अपनी मति को थोड़ा ध्यान रखो क्योंकि संपूर्ण जगत इस मन के ही वश में है परंतु जिन्होंने मन को वश में किया वही असल में सच्चा अर्थ में विजयी है। भगवत पाद आचार्य शंकर अपने शिष्य सन्यासी शिष्य को पूछते हैं केन जगत जीता किसने जगत जीता उत्तर क्या है मनो जेना। देखिए यहां पर कोई जगत जीतने के लिए कोई अन्य बाहरी शक्ति ताकत बुद्धि की जरूरत नहीं है। जेना जितम मन उत्तर जिन्होंने अपने मन पर विजय पा लिया वही इस संसार के विजेता है। इसलिए भगवत भक्तजन कितने बड़े भी विचारक हो, परंतु मन अगर उनके वश में नहीं है तो वो विचार से भी, उस तथाकथित ज्ञान से भी वो खुद को, खुद के ऊपर विजय पा नहीं सकते। इसलिए भगवत भक्तजन, जीवन में ऐसा एक तत्व जो आपके पास है, जो हमारे पास है, उसको हम उन्नति, उसको हम सुधार सकते हैं। यह मन के द्वारा केवल विषयों को पाने के लिए, विषय भोग को प्राप्त करने के लिए नहीं है। इस मन के द्वारा आप दिव्यातिदिव्य अनुभव को भी प्राप्त कर सकते। इसलिए भगवत भक्तजन, जो आपके पास है, जो मेरे पास है, उसको किस तरह से हम अपने जीवन के लिए उपयोगी करें, बनाएं, यह हमेशा हमारे दर्शन परंपरा में है। केवल इतना ही नहीं, समग्र अध्यात्म विस्तार जो है इस संसार में, किसको सुधारने के लिए नारायण? केवल मात्र मन को नाना प्रकार दृष्टांतों के द्वारा, घटनाओं के द्वारा, व्यक्ति के मन से ही वो परिचय कराते हैं, तुम कहां हो और तुम्हें कहां जाना है। और जिन्होंने अपने जीवन में इस मन को, मन पर विजय पा लिया है, वही इस संसार के विजेता है। न कि अन्य साधनों से जो भरा हुआ है वो विजय नहीं है। इसीलिए सभी, सब कुछ छोड़ करके जिन्होंने गुफा में वृक्ष के नीचे बैठे हैं, उनके चरणों में जाकर के हम बैठते हैं। क्यों? क्यों कहीं ना कहीं हमारे अंतस में एक छाप है, एक विश्वास है कि यही मन विजेता है, यही समग्र विजय को प्राप्त किया हुआ है। जब सर्कस देखता था उस समय तो पता नहीं लगा, आज मुझे याद आती है कि सर्कस में हाथी, शेर, जो कि एक मनुष्य से कितना बलवान है, एक हाथी के सामने आप क्या है, आपकी शक्ति ताकत क्या है, एक शेर के सामने मैं क्या हूं। परंतु जब वो शेर को, वो हाथी को उसी सर्कस में वश में करके नाना प्रकार खेल दिखाता है, तब लगता है कि देखो उस परमात्मा की कृपा को, उस परमात्मा की अनुकंपा को, कि ऐसा एक मन दिया है इस मनुष्य को, जो ताकत से तो बहुत छोटा है, परंतु उस शक्तिधर व्याघ्र, उस विशालाकाय हाथी को भी वो अपने मन के वश करके किस प्रकार खिलौना की तरह उसको यूज करता है। क्या नारायण ये मन का एक कर्म नहीं है? और जैसा आप चाह रहे, उस रिंग में आप जैसा उसको चाहते हैं, वो वैसा ही करने में मजबूर है। क्यों? 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 आप उनके मन पर विजय पा लिया। वो इतना शक्तिधर होते हुए, इतना विशाल काय प्राप्त करके भी एक क्षुद्र 3.5 हाथ के मनुष्य के पास वो बिल्कुल नत जानु होकर के अपने करामत को दिखाने में बाध्य है। तब मुझे लगता है कि देखो उस परमात्मा की क्या एक दिव्यता, कि इस मनुष्य को शक्ति ताकत क्या दिया, शरीर के परिधि विस्तार क्या दिया, उससे भी ज्यादा उनके मन को तो देखो। इस मन के जरिए वो बिल्कुल विश्व को विजय, विश्व विजेता बन सकता है। इसीलिए हमारे अध्यात्म शास्त्र बारंबार कहते हैं, देखो जीवन में अगर तुम विजय पाना चाहते हो तो खुद के मन के ऊपर विजय पाओ। व्यक्ति को विजय पाना, व्यक्ति के ऊपर अधिकार जमाना, ये आसान है नारायण। अनेक व्यक्तियों को हम अपने अधीन कर रख सकते हैं। हाथी को भी हमने अपने अधीन कर रखा, शेर को भी अपने हम अधीन कर रखा, परंतु जब वही व्यक्ति मन के पराधीन होकर के गुलाम की तरह घूमते हैं, तब दुख होता है कि देखो यही मन संसार को, संसार के शक्ति ताकतों को अपने वश में तो करने में कामयाब हुए, परंतु वो छोटा सा मन, उस मन को वो वश में कर नहीं पाया। इसीलिए भगवत पाद आचार्य शंकर कह रहे हैं कि मन की जो विजेता है वही सच्चा अर्थ में विजयी है, विजेता है। भगवत भक्तजन इसीलिए इस मन को थोड़ा देखना चाहिए। जीवन भर आप क्या कर रहे हैं, ना कर रहे हैं, उसका सारा परिणाम आपको, परीक्षा आपको देनी होगी। अंत समय में आपके मन स्थिति क्या है? हो सकता है कि मैं जीवन भर बहुत सत्संग किया, हो सकता है कि मैं जीवन भर बहुत तीर्थाटन किया, हो सकता है कि हमारे जीवन में नित्य निरंतर ईश्वर के साथ एक संबंध सा रखा हो, परंतु क्या गारंटी है कि वो हमारे मन पर, मन स्तर पर वो हमारे जीवन को प्रभावित किया हो अथवा नहीं? अगर नारायण उस पर मन बिल्कुल नहीं है, एक ऊपर से हमने किया दिखावा, तो नारायण वो मन आपको अंत समय में धोखे देने में, देने से बचेगा नहीं, वो आप धोखे में पड़ोगे। कई ऐसे दृष्टांत हमारे सामने हैं, नित्य निरंतर सुबह प्रातः 3 बजे उठ करके गंगा स्नान, विश्वनाथ दर्शन, भगवती दर्शन करके उसके बाद जल ग्रहण करना, ऐसा संत भी मिले। परंतु ज्यों ही उनका अंत समय, इतने शास्त्र के ज्ञाता न्याय वेदांत पढ़ाते थे, अंत समय में जब आया कि क्या स्वामी जी क्या बात है, अभी भगवान को स्मरण कीजिए, काशी में शरीर जाना, शास्त्र विहित काशी मृत्यु वहां महान माना गया है, और उनकी जो शब्दावली है नारायण बहुत दुखद होता कि क्या पता तुमने देखा कि काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। ये जो अनास्था, तब नारायण बहुत चोट पहुंचता है कि इस व्यक्ति के जीवन को दीर्घ 60 साल से, ऐसा नहीं कि 6 साल से, 60 साल से इस प्रकार से जीवन जिए हैं, इतना अध्यात्ममय, उनसे हजारों लोग प्रेरित हुए हैं, और आज इस व्यक्ति के जीवन में ऐसा अनास्था, तो फिर सारा जीवन का किया हुआ कर्म धर्म क्या हुआ? और कहीं ऐसा ना हो कि तीव्र कामना के कारण, तीव्र वासना के कारण उसको फुलफिल न कर पाए, परिस्थिति परिवेश शक्ति ताकत नहीं है, और वो मन ही मन इतना दबता गया, और जिसके कारण अंत समय आते आते ये जो हमारे सामने बीमारियां, जो नशों की बीमारी है, मैं उसको निर्देश कर रहा हूं। मैं तो एक संत को ऐसे भी देखा, पार्किंसन की बीमार, वो बेचारा जीवन भर इतना वेदांत का अध्ययन किए, घंटों भर गंगा जी में साधना किए, उत्तरकाशी जैसा स्थान में रह करके गंगा तट पर चार चार घंटा जप करते थे। ऐसे महापुरुष जो हमारे प्रेरक रहे, आज शारीरिक अक्षमता के कारण वो स्थिर होकर के बैठ नहीं पाता है। ऐसा एक पार्किंसन की बीमारी, वो स्थिर ही नहीं होगा, हमेशा वो शरीर उनका बिस्तर के ऊपर चद्दर नहीं दिया गया है। देख करके कितना खराब लगता है, क्योंकि वो चद्दर रहता नहीं है, इतनी उनमें चंचलता है। मतलब वो जानबूझ के कर रहे, ऐसा नहीं है, शरीर मन मति उनके वश में नहीं है। वो इतना हिलता है, चारों तरफ से वो कील ठोक दिया गया प्लास्टिक लगा करके बिस्तर के ऊपर, क्योंकि उनके शरीर उनके अधीन नहीं है। उनका मन वो चाहते हैं कि कहते हैं कि देखो मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा बैठूं, परंतु कुछ अन्याय तो जरूर किया हूं मैं जो आज स्थिति में। तो इसीलिए नारायण मन को शोधन, वो स्वामी जी का ही ये बात मैं कह रहा हूं कि मन के अंदर कोई भी भाव, देखो मैं नशों के कारण मेडिसिन ले रहा हूं, उसका साइड इफेक्ट काफी है मुझे पता है, परंतु कहीं न कहीं देखो हमारा अनकॉन्शियस मन में कुछ तो सुप्त वासना कामना, जो हमने उसको खोजा नहीं अथवा उसकी बातों को हमने ध्यान नहीं दिया, दबाया, वो जो एक्शन आज हमें मिल रहा है, कितनी दुख की बात है। जीवन भर जिन्होंने मन को साधने की कोशिश की और वो आज, और ठीक देखिए ठीक वैसे और एक महात्मा, कैंसर जैसा बीमारी, और बिल्कुल जिस अंग पे हुआ डॉक्टर ने बोला कि बस ये फूटेगा तो फिर आपका शरीर, उनको बता रही वो, और वो संत जी स्वयं डॉक्टर है, स्वयं डॉक्टर है, परंतु जब मिलने गया तो उनके इतना वैभव, इतने प्रभावशाली संत समाज, भक्त समाज, विद्वत समाज, जब मिलने गया, समय उपनीत हुए शरीर जाने का, सबको निकाल दिया, वो अकेला कौपीनवंत और एक ब्रह्म सूत्र साथ में लेकर के वो मस्ती से शारीरिक वेदनाओं से ऊपर उठ करके वो जी रहे हैं। अब ऐसे व्यक्ति को देखकर के कैसा लगता है? देखो समाज में दोनों तरफ की है, पहले दोनों को देख करके मन को समझा कि बाप रे बाप, मन इतना हमको यहां तक ले जा सकता है, और फिर वो संत को देख करके देखो इन्होंने मन को साध लिया। साधक वही है जो मन को साधता है और साधने में कामयाब हो जाता है, वही सिद्ध है। इसलिए भगवत भक्तजन ये मति को लेकर के थोड़ा विचार जरूर करे। अंतर मन के साथ हमारा एक संबंध हो, केवल बाहरी मन से हम जीवित न रहे न जिए, अंतर मन के साथ थोड़ा बैठो, विचार करो कि उसका भी कुछ जरूरत है आपके प्रति। हो सकता है कि आपके एक सपोर्ट उनको चाहिए, उस अंतर मन को, वो सुधर जाए, परंतु हम लोग बिल्कुल बेखबर होते हैं उस अंतर जगत से, इसीलिए बाहरी जगत की कामना वासनाओं से, विचारों से इतने उलझे होते हैं, उसको सुलझाते सुलझाते अंतर मन के साथ कोई संस्पर्श नहीं होता है, और फिर अंतिम में नारायण वही अंतर मन हमें डोमिनेट करता। इसीलिए तो भगवान आचार्य कहते हैं अंते जा मति सैव गति। तो ये विषय वासना ये सब आपने जो ऊपर मन से किया जो अंतर मन के साथ कोई संस्पर्श नहीं रहा। अंतर मन में आपको करना था, आप ऊपर से सब अध्यात्म विचार किए, सत्संग किए, परंतु अंतिम समय में वो अनास्था, अविश्वास, अश्रद्धा ना हो। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की आवश्यकता है, प्रभु हमारे दैनंदिन जीवन कैसा भी हो, हमारा मन को तुम थोड़ा जरूर देखना, कहीं ये मन हमें उसका जो करनी धरनी वो अंत में सक्सेस सफल ना हो जाए कि हमें इस संसार में आने के लिए बाध्य कर दे। इस मन पर ऐसा एक शासन हो, एक अनुशासन हो, एक मन के साथ एक समझौता हो, एक वार्ता हो जो व्यक्ति के जीवन के शुरू से लेकर अंत तक उसको ये मन सहायक बने, मन सहायता करे। सिकंदर इतना बड़ा योद्धा, सिकंदर विजय पाने के लिए निकले और उनके गुरु सूफी संत के पास जाकर के प्रणाम किया, निवेदन किया कि मैं भारत जा रहा हूं, भारतवर्ष सुना है बहुत समृद्धशाली है, तो आपके आशीर्वाद चाहिए। क्यों नारायण, सिकंदर इतना बड़ा विजेता क्यों? उस सूफी संत के पास, गुरु के पास गए, केवल गुरु माना इसलिए क्यों? क्योंकि अनकॉन्शियस में, अवचेतन में हमारे अंदर वो विश्वास है कि ये व्यक्ति विजेता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने मन को अपने वश में किया। इसलिए सारा संसार नारायण, जिन्होंने मन पर विजय पाया उनके चरणों में लूट पूट जाते हैं। पद, प्रतिष्ठा, गरिमा, महिमा, वहां कुछ नहीं होता है। उनको पता है उनके अवचेतन मन में कि हम कितने भी व्यवहारिक जगत में ऊंचाई पर उठे, परंतु कहीं न कहीं हम पराजित है, और ये व्यक्ति कहीं न कहीं वो विजेता है, विजयी है, और तब जाकर के उनके चरणों में पास बैठते हैं कुछ लेने की विचार से, कुछ पाने की इच्छा से। सिकंदर जब जाकर के पूछा कि मैं जा रहा हूं, आप आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद बहुत आवश्यक है, गुरु सूफी संत दो बाह उठा करके कहा, भोग भूगोल को, भौगोलिक परिधि को तुम चेंज, परिवर्तन कर दो, तुम्हारा विजय पताका चारों तरफ लहराए। कितना बड़ा एक आशीर्वाद गुरु से मिला। प्रसन्न हो गए सिकंदर कि वाह, गुरु वो भी इस प्रकार उन्मुक्त रूप से आशीर्वाद, मेरा विजय निश्चय है, निश्चित है। सिकंदर को गुरु कहते हैं, देखो भारतवर्ष जा रहे हो, बड़ा समृद्ध, आज के समृद्ध नहीं नारायण, ये कितने पुराने घटना है। फिर कहते तुम आते समय मेरे लिए कुछ चीज लाओगे, मैं बताऊं। सिकंदर भी सोचने लगे कितना सौभाग्य है, वो भी गुरुदेव आशीर्वाद दिए और एक चीज मंगवा रहे, मैं नहीं लाऊंगा, ये तो परम सौभाग्य है। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि जरूर, ये आपके आशीर्वाद, ये आपके आदेश मैं जरूर पालन करूंगा गुरुदेव, बताइए। वो सूफी संत ने कहा कि देखो गंगा जी लाना, ध्यान रखिए नारायण, गंगा जी लाना, एक गीता ले आना, मैंने सुना गीता बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है, और तृतीय तीसरा बता रहे एक महापुरुष को ले आना, उस देश में बहुत महापुरुष है जो जिन्होंने मन पर विजय पा लिया है, अगर तुम उसको ले आ सकते हो तो तीन चीज तुम जरूर मेरे लिए ले आना, गंगा जी, गीता जी और एक महापुरुष, एक मनीषी को ले आना। सिकंदर विजय पाया भारतवर्ष में वो चारों तरफ घूमे और अंत में गुरुजी के बातों को स्मरण करके शायद गीता जी भी ले लिए, शायद गंगा को भी शायद लेने में कामयाब हुए जो हम करते हैं। अंत में आया किसी मनीषी के पास, संत के पास। संत को कहते हैं कि चलिए वृक्ष के नीचे, गुल्म के नीचे वो बैठा था संत, बेफिक्र, कोई फिक्र नहीं। आकर के सिकंदर प्रणाम पूर्वक पूछते हैं कि आपको जाना है मेरे साथ मेरे देश में? मेरे गुरु का आदेश है कि एक संत, एक मनीषी को ले आने का, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप हमारे साथ चलिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, कोई असुविधा नहीं। आपको बढ़िया रहने के लिए कमरा मिलेगा, बढ़िया पहनने के लिए रेशमी वस्त्र मिलेंगे। वो निराला संत बलकल परिधान करके वृक्ष लता को धारण करके बैठे थे, कोई जीवन में फिक्र नहीं था। सामने से राजा कहने लगे कि भाई आपको रेशमी का कपड़ा मैं दूंगा पहनने के लिए, कोई दिक्कत आप पर आने नहीं दूंगा, आप चलिए, हमारे गुरुदेव का आदेश है। अब नारायण, मैं इसीलिए इस कथा को उठाया हूं, वो जो संत, वो जो भारत भूमि की जो विजेता है, इस भूमि उतना ही पावन है जितना एक तीर्थ, एक भगवत्ता में जो पावनता है। संत जी ने कहा कि देखो बेटा, तुमने तो मेरी सारे जरूरतों को पूर्ण कर दोगे, ये तुमने वादा किया, कर भी सकते हो मुझे विश्वास है, परंतु ये बताओ, मैं तो बलकल पहन करके बैठा हूं, वृक्ष छाल पहन करके बैठा हूं, अच्छा तुमने जो ये वस्त्र पहना, कितने रत्न जड़ित है ये, इसको पहन करके तुम्हारे मन में कोई भय नहीं होता, भय उत्पन्न नहीं होता? बोले ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भय नहीं लगता। बोले अच्छा, बोले हाँ इतना है। वो सिकंदर कहने लगे कि हाँ, रात को जब इसको सोते समय उतरता हूं, रात्रि के लिए अन्य परिधान पहनता हूं, तब जरूर हमारे सुरक्षा व्यवस्था को कहता हूं कि इसको थोड़ा ध्यान रखना वस्त्र का हो। बोले अच्छा। वो संत जी, वो महापुरुष कहने लगे कि भाई तुम नाराज मत होना, क्षमा करना। वो संत कह रहे सिकंदर को, क्षमा करना, तुम इस रत्न जड़ित वस्त्र से जितना तृप्त परितुष्ट होते हो, मैं इस वलकल को धारण करके भी उतना ही परितुष्ट हूं। तो परितोष तो मुख्य चीज है, चाहे तुम रत्न जड़ित पड़ो पहनो या रेशमी पहनो या बलकल को धारण करो।
बयमिह परितुष्ट बलकलस्त्वं दुकूले सम इह परितोषो निर्विशेष विशेष।
ये सम इह परितोषो, हमारा जो परितोष है, तुम्हारा रत्न जड़ित वस्त्र से तुमको जो परितोष है, और मैं बलकल पहन करके भी जो परितुष्ट हूं, इस परितोष में क्या भिन्नता है, क्या विशेषता है? तुम भी परितोष हो, मैं भी परितुष्ट हूं। निर्विशेषो विशेष, इसमें कोई विशेषता नहीं। हो सकता है तुम दामी वस्त्र पहने हो, परंतु परितोष को देखो तो एक है। इसलिए हे सिकंदर
बयमिह परितुष्टा बलकलत्वं च दुकुले।
दुकुल शब्द का अर्थ है वस्त्र। हम तो इस वस्त्र से परितुष्ट है। और वो संत जिन्होंने मन को जीत करके उस वृक्ष के नीचे बेफिक्र होकर बैठा था, वो सिकंदर को एक तत्व का उपदेश देता है। अंत में वो कहता है
सतु भवति दरिद्र यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्र। सतु भवति दरिद्र यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्र।
वही व्यक्ति दरिद्र है जिनकी तृष्णा इतना विशाल है। और मानसे परितुष्ट मानसी च परितुष्ट कोर्थवान को दरिद्र। अगर मानसे आप तुष्ट हो, इसलिए भगवत भक्त जन वो मन वो मति, इस मति को थोड़ा जरूर जीवन में ध्यान करे, अनुध्यान करे, मति को उपासना के क्षेत्र में रखे कि इस मति को कैसे हम थोड़ा सुधार सकते हैं। क्योंकि सारा विश्व सारा संसार सारा अध्यात्म इस मति के ऊपर है। आप इस मति को कैसे जीवन में लाए उपयोग कर रहे हैं। इसीलिए भगवत भक्तजन आचार्य शंकर अपने स्तुति में इसमें स्तुति में लिखते हैं कि देखो एक मन अगर ठीक शोधन कर लिया, मन को साध लिया जीवन में, तो फिर तुम्हारे लिए इस बाह्य जगत की कोई मूल्य नहीं है। परंतु हमारा जीवन का यही सबसे बड़ी घटना है कि मन के पास हम हमेशा पराजित होते रहते हैं। उस मन पर विजय पाना ही सच्चे अर्थ में विजय है। नहीं तो बहुत कुछ पा करके भी मैं उतना ही भिखारी बन करके रहते हैं। इसीलिए भगवत भक्त जन आचार्य शंकर एक लिखते हैं
पंचाक्षरम पावनमुच्चरंतम।
पंचाक्षर पावन जो है उनके दृष्टि में ओम नमः शिवाय ये पावनकारी है।
पंचाक्षरम पावनमुच्चरंतम पतिम पशूनाम हृदि भावयंतम।
ये मुख से उच्चारण करो पंचाक्षर और पशुम पति नाम भावय भावना
हृदि धारयंत।
हृदय में क्या हमने धारण करके रखा नारायण, जो भी हमने रखा आज तक अभी तक वो हमारे हृदय को व्यथा ही दिया, व्यथित किया, हृदय को कमजोर बनाया, हृदय को बिल्कुल खत्म करने के लिए बैठा है। परंतु हृदय में ऐसा एक भाव रखो, एक विचार को रखो जिसके द्वारा जीवन बिल्कुल अलग हो जाए। भगवत पाद आचार्य शंकर इसीलिए लिखते हैं
पतिम पशूनाम हृदय भावयंत।
उस पशुपति मन के पराधीन होकर के तुम पशुबद्ध जी रहे हो, मन ही तुमको चला रहे, मन खींच करके तुम्हें इधर उधर ले जा रहे। अरे उस पशुपति को याद करो जिन्होंने उस बैल रूपी मन रूपी बैल के ऊपर बैठ करके सारे विश्व संसार को नियमन कर रहे, उस उनका जो वो दिव्य रूप है उनको स्मरण करो। वो कह रहे हैं पतिम पशुनाम, वो पशुओं के पति है, वो जीवों के पति है, तुम मन के पशु न बनो, तुम वो अधिदेवता देवताओं के पशु बनो, वो जो पशुपति है उनको याद करो। हृदि भावयंत, फिर जीवन कैसे चलेगा? आपने तो दो तत्व बता दिया कि मुंह से उच्चारण करो और मन में हृदय में धारण करो।
पंचाक्षरम पावनमोच्चरंत पतिम पशूनाम हृदय भावयंत भिक्षासनादिक्षु परिभ्रमंत।
भिक्षा करके खा लो। एक संत कोई फिक्र नहीं, देखो हम इतना सोच विचार कर भी हम अपने मन को अभी सुखी नहीं बना पाए, इतनी व्यवस्था बंदोबस्त हमने किया, एक दिन की नहीं, दो दिन की नहीं, एक साल नहीं, दो साल नहीं, एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, न जाने कितनी पीढ़ियों की हमने व्यवस्था कर दी, और एक कहीं ना कहीं संतुष्ट ऐसा लगता है कि हमने किया। परंतु आप अपने इटरनल पार्ट से आप खुद के लिए पूछो कि आपके लिए आपने क्या किया, वो आपकी संतुष्टि है क्या जिसको आप पाना चाह रहे थे, आपके सप्रेशन में, आपके अनकॉन्शियस में जिसकी प्राप्ति की एक चाह है। तो इसीलिए
वीक्षासनादिक्षु परिभ्रमंत कौपीनवंत खलु भाग्यवंत।
और वो महाराज कौपीन पहन करके बैठे और वही सबसे खलु भाग्यवंत। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन को विजय किया, मन को अपने अधीन किया। इसलिए तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं ना,
निर्मल जन मन सो महि पावा मोहि कपट छल चित्र न भावा।
मोहि कपट छल चित्र न भावा, ध्यान रखिएगा, निर्मल मन। इसलिए जिस मन में एक निश्चलता है, निष्कपटता है, वही मन पर आप विजय पाए तो फिर नारायण उस मति से आप जीवन को सुधार सकते हैं। इसलिए व्यक्तित्व के जो मूल पार्ट है वो है शरीर, और शरीर में, शरीर चेतना में हम जीते हैं, और कहीं ना कहीं हम मन स्तर पर जीते हैं। अध्यात्म हमेशा, कल भी मैंने जिसको कहा, अध्यात्म हमेशा अपने मन पर काम किया, अंतर जगत को लेकर के विचार किया, जो विज्ञान जो साइंस ने बाहरी जगत को प्रोग्रेस किया। इसलिए नारायण अध्यात्म शास्त्र में आपको देखिए, स्तुति में जो भी वार्धक्य तक आप लोगों ने पहुंच गया, हम लोग वार्धक्य के आधा हिस्सा पहुंचे मन तक, तो देखो यहां तक मन तक हमने थोड़ा काम किया। इसलिए नारायण बारंबार उस मन को थोड़ा देखिए, जिस चिंतन में आप डूबे हो शायद वो चिंतन आपके जीवन में कामयाब नहीं, आप उसको पूर्ण नहीं कर सकते हैं, कहीं निश्चिंत तो हो जाओ। इतना कुछ हमने जीवन में किया पाया, परंतु एक निश्चिंतता, एक निश्चयता, एक निर्भयता, एक निर्द्वंद्वता, एक संशय रहितता मिला? अगर मिला तो आप नमस्य है, प्रणम्य है। अगर नहीं मिला नारायण, तो अभी भी हमारे सामने बहुत समय है कि वो व्यर्थ फिजूल के चिंता को छोड़ करके थोड़ा आत्मचिंतन करो। अपने खाने पहनने रहने की चिंता अब तक किया, अभी तक तो हमने कोई निश्चिंत नहीं हो पाए, और ज्यादा अनिश्चिंत अनिश्चय हो गया। क्या पता इतना होते हुए भी हमारे अंतिम समय में क्या होगा, क्या पता ये मिलेगा, क्या पता वो मिलेगा। परंतु कभी थोड़ा उस पर ब्रह्म परमात्मा को, जिन्होंने इस देहरूपी ज्योति को प्रकाश किया, प्रकट किया, उस बचपन से जिन्होंने सुरक्षा दे दे करके आकर रखा, तो क्यों इस बेवकूफी की बात की आज मैं अपनी चिंतन खुद को करने लगा। अरे कभी छोड़ करके देखो, इस कंफर्ट जोन से निकाल करके, निकल करके देखो तो, इतनी व्यवस्था करके जो हमने पाया नहीं, थोड़ा उनके हाथ सौंप करके देखो क्या मिलता है। और उस दिन वो प्रार्थना, आज सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। उस दिन वो सत्य प्रार्थना। भागवत की कथा आप लोग सुनते हो, भागवत के वक्ता टीकाकार स्वयं अपने जीवन से उस श्लोक को लिखा कि जीवन में, हमारे जीवन में कोई चिंता नहीं है, एक व्यक्ति के जीवन में कैसे हो ये जो प्रश्न हम पूछते हैं, क्या हाल चाल है, इसके पीछे क्या आपके मकसद है। वर्तमान और भविष्य दोनों को आप पूछ लेते हो, वर्तमान में सब ठीक है, सही सलामत है शारीरिक रूप से, और भविष्य को पूछते हैं सब आगे भी ठीक रहेगा ना। हम शायद वर्तमान के उत्तर देने में कामयाब होते हैं और उत्तर देते हैं, भविष्य के लिए उत्तर नहीं है, वो एक भय का कारण बन करके बैठा है। और जो थोड़ा निकट आता है, वो गुरु हो चाहे थोड़ा बंधु हो, निकट है, उनके साथ हम भविष्य की बातें करते हैं, और फिर उनके साथ जो संबंध होता है आंतरिक होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का जो दुख दर्द है, जो अतृप्ति है, अप्राप्ति है, उसको हम उनसे कहते, इसीलिए कहते वो मेरा बहुत निकट का है। और जो ऐसे पूछ करके गया जिनको हमने कहा भी दिया शायद अच्छा हूं बढ़िया हूं, इसलिए इतना व्यवस्था करने के बाद अगर कोई अव्यवस्था भी देखे, अगर ईश्वर के ऊपर इतना विश्वास रखो कि अगर वर्तमान जीवन में कोई अच्छा कोई खराब घटना हमारे साथ हो भी रहा है, तो वो है जो हमारे लिए कुछ अच्छी व्यवस्था करके रखा होगा। किसी मां ने कहने लगी कि स्वामी जी इतने दिन का सत्संग क्या प्रभाव दिया मुझे पता नहीं है, परंतु एक बात मेरे मन में बिल्कुल पक्का। क्या? वो क्या, क्या पक्का आपने कर लिया? कहती इतना हो गया कि जब भी मैं देखता हूँ कि हमारे जीवन में कोई घटना है खराब, तो मुझे मेरे मन में कोई कष्ट नहीं होता है, मैं वो प्रभु मेरे लिए कुछ अच्छा व्यवस्था कर दे रहे हैं। मैं मन ही मन प्रणाम किया कि देखो ये बात अगर वो दिल से कह रही है तो ये उनके जीवन में एक प्राप्ति है, अचीव है, जो हम 50 साल सुन करके पढ़ करके साधना करके भी नहीं पा सकते। कहते स्वामी जी हमारे छोटे बेटे के बहू ने घर से निकाल दिया मुझे, जब उनको मैंने ही लाया, और उन्होंने कहा कि बस इतने साल हो, इतने दिन हो मेरे साथ रह रहे हो, अब तुम्हारे बड़े बेटे के पास जाओ, और उसकी सुखबुगाहट पहले से मुझे पता लग रहा, और मैं सोचा कि देखो बड़े बेटा का स्थिति उतना अच्छा नहीं है। और अचानक मेरे मन में क्या हुआ, फिर देखते कि बेटा को लॉटरी में एक फ्लैट मिला, वो भी 3 बेडरूम वाला। स्वामी जी वो बेटा का कभी इस जीवन में वो औकात नहीं होता, वो लॉटरी में मिला। और तो मैंने देखा कि देखो परमात्मा ने उनको 2 रूम की जरूरत, 3 बेडरूम दिया, इसीलिए कि मेरे लिए उधर व्यवस्था है। मैं हंसता हुआ, कोई दुख नहीं, ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ वहां गया। मैं अभी आता हूं यहां काम करता हूं, सेवा सब कुछ मैं, पर तो मेरे मन में कोई उस छोटे बेटे के बहू के प्रति कोई दुख, कोई शिकायत, कोई कंप्लेन नहीं है। ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि देखो तू यहां से हिलाया, इस व्यवस्था से अच्छी व्यवस्था रहा हिलाया जाने के लिए, लेकिन उधर तूने व्यवस्था, वो स्वामी जी चाल में रहता था। तो देखो वो मां की अनुभव, उनकी कोई साधना नहीं, तपस्या नहीं, मैं कह सकता हूं, परंतु उन मां ने जो पा लिया, अगर अंदर से उनकी वो फीलिंग है, वो विश्वास है, तो नारायण वो जीवन को कुछ पा लिया जीवन में। इसलिए जो चिंतन हम कर रहे हैं, जो चिंता में डूबे हुए हैं, थोड़ा चिंता मणि के पास तो छोड़ के देखो, तो देखो तुम्हारी चिंता वो करेगा। जो बेटा खुद अपने पांव पर चलने के लिए मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, कोई फिक्र नहीं, तो वो बाप मां थोड़ा छोड़ जा कर। और जो बेटा बिल्कुल कि तू बिना और कोई नहीं, फिर उनके लिए ईश्वर खड़े होकर के अतंद्र होकर के सेवा में लग जाते हैं। और वो मधुसूदन प्रार्थना करते हैं, का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वंभरो गीयते नो चेत अर्भक जीवनाय जननी स्तन्यं कथं नीश्वरे इत्यालोच्य लोच्य मुहुर्मुहुर् यदुपते लक्ष्मीपते के बलम्। का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वंभरो गीयते, विश्वंभर अगर उनको कहते हैं परमात्मा को, ईश्वर को, अगर वो विश्व को पालन करने वाला है, विश्वम भारती पालयति रक्षयति च, तो का चिंता मम जीवने, इस जीवन में मेरा क्या चिंता है। यदि हरि विश्वंभरो गीयते, अगर तुम कहते हो कि विश्वंभर नहीं है, तुम पुरुषार्थ करो, प्रयत्न करो, तभी तुम्हें रोटी मिलेगी, तो वो छोटा सा एक प्रश्न आपके सामने रखा कि जन्म के बाद ही मातृ स्तन में दूध की व्यवस्था कौन किया, तुमने। नोचेद अर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निश्चरेत, तो फिर आज हम इतना चिंतन में क्यों डूबे हैं, आज हम क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं। इत्यालोच्य मुहुर् मुहुर् यदुपते लक्ष्मीपते केवलम्। तो बाकी जीवन क्या करे, तत्पादाम्बुज सेवनेन सततम् कालो मयानीयते। निश्चय कर लेता है वो साधक, वो भक्त, कि तत्पादाम्बुज सेवनेन सतत, जीवन भर सतत निरंतर उनकी पादाम्बुज सेवन के द्वारा ही मैं जीवन व्यतीत करूंगा, काल को क्षेपण करूंगा। ये है नारायण निश्चय। देखो मन की ही स्थिति है, मन की ही चिंतन में हम डूबे हैं, और उस चिंतन करते करते शरीर चेतना को हम और कष्ट दे करके खराब करते हैं, और वही मन उस ईश्वर के चरणों में देख करके निश्चिंत, चिंता उनके ऊपर छोड़ करके निश्चिंत होकर के जी सकते हैं। वो जो वृद्धत्व है, वो जो वार्धकत्व है, वो हमारे जीवन की एक प्राप्ति है। आचार्य शंकर कह रहे विगत गति मति, मति बिल्कुल, मति को थोड़ा सुधारो, मति को थोड़ा देखो, यही मति तुम्हें परम तृप्ति दे सकती है। एक बार श्लोक का उच्चारण करेंगे, बार्धक्ये चेन्द्रियाणां विगत गति मति चाधि दैवाधितापै पापै रोगैर् वियोगै तनवसित बपु पौढ़िहीनम च दीनम मिथ्या मोहाभिलाषै भ्रमति मम मनो धूर्यते ध्यान शून्यम
क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।